الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة. اور وہ اللہ ضرور تم کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا، لا ریب فی، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں. ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ پوری بات کا نچوڑ جو پچھلے دو تین رکوعوں سے چلا آ رہا ہے ایک ہی بات پر ہے کہ لوگو خدا ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. دوسری، قیامت کا دن آ کر رہے گا. دنیا کی زندگی میں اگر کوئی شخص جس طریقے پر چاہے چلتا رہے اور جو چاہے کرتا رہے، لیکن بھاگ کر جائے گا کہاں؟ سب کو ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور جب وہ حاضر ہوگا تو اپنے اعمال کے نتائج دیکھے گا. اور اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، فمن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے. تو سورت نساء کی آیت نمبر 87 پر ہمارے آج کے سبق کا اختتام ہوتا ہے. اللہ تعالی مجھے اور آپ کو بہترین مسلمان بنائے، اپنے ظاہر میں، اپنے باطن میں، اپنی گفتگو میں، اپنے عملوں میں، سوچوں میں، ہر چیز میں جو ہے ہمیں اسلام جو ہے اس کو اختیار کرنے والا بنائے. اللہ مجھ سے اور آپ سے راضی ہو جائے، ہمیں صحبت صالح عطا کرے، ہماری زبان کو سچائی عطا کرے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن پر اللہ جو ہے وہ انعام کرتا ہے، اور وہ بہترین رفاقت ہے اور بڑے خوش قسمت ہے جن کو وہ میسر آ جائے. اور اللہ کرے کہ صحبت صالح مجھے، میرے شوہر کو، آپ کو، آپ کے شوہر کو، میرے بچوں کو، آپ کے بچوں کو، اور ہم سب مسلمانوں کو صحبت صالح ملے. اور آج کے اس زمانے میں اور آج کی اس دنیا میں یہاں پہ ڈالر بھی بہت ہیں، گاڑیاں بھی ہیں، گھر بھی ہیں، اچھے دوست، نیک دوست، صحبت صالح کا ملنا جو ہے یہ بڑا مشکل ہے. تو اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو یہ ٹھنڈی ہوائیں، یہ برفانی پودے، یہ برفوں کے پہاڑ، جہاں پہ ایمان برف بن جاتا ہے، برف کی برف بن کر پگھل جاتا ہے، تو اللہ ہمارے ایمان کو پہاڑوں سے مضبوط کر دے اور ہم سب کو صحبت صالح عطا کرے. سورۃ النساء کی آیت نمبر 88 سے جو ہے وہ منافقین کا ذکر شروع ہوتا ہے. تین مختلف گروہوں کا ذکر ہے اور ان کے متعلق احکامات بیان کیے گئے ہیں. انداز جو ہے وہ بڑا ہی زبردست ہے، سوچنے سمجھنے پر آمادہ کرنے والا. فما لکم، مجھے قرآن کا یہ انداز بڑا ہی خوبصورت لگتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے دل پر چوٹ کی گئی ہے. فما لکم، پس کیا ہو گیا ہے تمہیں. فما، پس کیا، لکم، واسطے تمہارے، پھر یہ تمہیں کیا ہو گیا. فی المنافقین، منافقین کے بارے میں، تو منافقین کے بارے میں تمہیں کیا ہو گیا ہے. فئتین، دو گروہ ہو گئے. اب آپ دیکھیں کہ فئتن جو ہے آپ پہلے بھی پڑھ چکی ہیں، اور فا یا حمزہ اس کا روٹ ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں ایک دوسرے سے تعاون کے لیے لوٹنے والی جماعت. اس کے لغت کے اعتبار سے معنی ہے لوٹ کر آنا، تفیعہ یا فا. اسی سے فیاتن، گروہ اور جماعت کو کہتے ہیں، کیونکہ جو فیاتن، گروہ یا جماعت ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ ایک دوسرے سے تعاون کے لیے لوٹتا ہے. جیسے اس گروہ یا جماعت میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی طرف آتے ہیں تاکہ تعاون کریں. اور اسی سے مال فے بھی ہے، اور مال فے میں کیا ہوتا ہے کہ مال جو ہے وہ کسی کے پاس جو ہے وہ لوٹ کر آتا ہے. تو اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا، یہ تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقین کے بارے میں تمہارے درمیان دو رائے پائی جاتی ہیں. فی المنافقین فئتین، تمہارے درمیان دو رائے ہو گئی. اللہ ارکسہم بما کسبو، حالانکہ اللہ جو ہے ارکسہم، اوندا کیا ان کو، اللہ نے ان کو اوندا کر دیا، اللہ نے تو ان کو الٹا پھیر دیا. بما کسبو، جو کچھ انہوں نے کمائی کی ہے. اور آپ دیکھیے کہ ارکسا جو ہے اس کا روٹ ہے را کاف سین. اس کے لفظی معنی ہے کسی چیز کو الٹ دینا، اس کو اوندا کر دینا، अरकस शय चीज को उसकी साबिका हालत पर लौटा देना। जैसे मसलन जग ही है, आपने उसको सीधा रखा हुआ था, फिर उसको उल्टा किया तो फिर सीधा कर दिया, तो कोई चीज जो है उसको उसकी पहली वाली हालत पर दोबारा लौटा देना। तो अल्लाह ने क्या किया, वल्लाहु अरकसहुम, अल्लाह ने तो उन्हें उल्टा फेर दिया है, उन्हें लौटा दिया है। और उन्हें उल्टा कहाँ पे लौटाया, कि वो अपने ईमान से जो है वो दोबारा वो कुफर की तरफ चले गए। क्यों, बिमा कसबू, जो कुछ उन्होंने कमाई की है। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी को जो है वो ऐसे नहीं उल्टा करता, ऐसे नहीं कि वो मुनाफिक बन जाए, बल्कि इसकी वजह क्या है कि बिमा कसबू, कि उनके अपने अमल ऐसे थे जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है उन्हें औंधा कर दिया है, उनके अमाल की बदौलत उन्हें औंधा किया है। क्योंकि जब मुनाफिकीन ने वापस जाकर अपनी मुनाफिकत का सबूत दिया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी जो है वो उनके जो है वो पलट जाने को ही जो है वो पसंद किया। इस सिलसिले में हजरत जैद बिन साबित रजी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वे उहद की जानिब निकले, तो कुछ लोग मुनाफिकीन जो थे वो रसूल अल्लाह को छोड़कर मदीना वापस आ गए। आपको पता है ना अब्दुल्ला बिन उबई और उसके साथी, इन वापस होने वालों के बारे में सहाबा कराम के दरमियान दो ग्रोह हो गए। एक कहता कि हम इनसे भी लड़ाई करेंगे, और दूसरा कहता कि लड़ाई ना करेंगे। उस वक्त ये आयत नाजिल हुई। तो अब यहां पर जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये बात बता दी कि वो मुनाफिकीन जो बगैर किसी उज्र के और बगैर किसी जो है वो मजबूरी के जो है वो दीन का साथ नहीं दे रहे, इस्लाम का साथ नहीं दे रहे, तो असल वजह उनका निफाक है, उनकी रिश्तेदारियां, उनकी कराबतदारियां, तो उसकी वजह से जो है वो मुसलमानों को जो है या इस्लाम को अहमियत देने की बजाय जो है वो अपने रिश्तेदारों को या अपनी मसलतें जो है उनको वो अहमियत दे रहे हैं। तो यहाँ पे यही बात फरमाई जा रही है कि असल में वल्लाहु अरकसहुम बिमा कसबू, के जो बुराइयां उन्होंने कमाई, जो उनके अंदर निफाक पाया जाता है, तो इसकी वजह से उन्होंने अल्लाह ने उनको उल्टा कर दिया। और मुसलमानों के लिए ये मसला क्यों पेचीदा बन गया कि उनके साथ कैसे मामला किया जाए, क्योंकि एक ग्रोह मुसलमानों का कह रहा था कि ये कलमा पढ़ते हैं, नमाज अदा करते हैं, रोजे रखते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, तो इनके साथ कुफार का सा मामला नहीं किया जा सकता। दूसरा ग्रोह ये कहता था कि ये लोग जो हैं ये मुसलमानों का इस्लाम का साथ नहीं देते, और बदस्तूर अपनी काफिर कौम के साथ रहते बसते हैं, तो इसलिए जो है ये सच्चे मुसलमान नहीं है, गो के इन्होंने इस्लाम जो है वो कबूल किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, आतुरीदून अन तहदू मन अदल्लाह, क्या तुम चाहते हो अन तहदू के तुम हदाय दे दो, मन अदल्लाह, के जिसको अल्लाह ही ने जो है वो गुमराह कर दिया, जिसे अल्लाह ही राह से हटा दे। ऐ मुसलमानों, तुम चाहते हो कि तुम उसे हदायत दे दो। वमन युद्लिल्लाहु फलन तजिद लहू सबीला, हालांकि जिसको अल्लाह जो है वो गुमराह कर दे, तो उसके लिए तुम कोई रास्ता जो है वो नहीं पा सकते, तुम उसे जो है वो राह रास्त की तरफ जो है वो नहीं ला सकते। अब यहां पर जो है ये बात बताई जा रही है कि असल मायार ईमान और इस्लाम का साथ देना है, और अगर कोई इस्लाम के लिए कुर्बानी करने को तैयार नहीं है, तो ऐ मुसलमानों, तुम उन पर एतमाद नहीं कर सकते, और तुम्हारे चाहने से वो मुसलमान नहीं हो सकते जब तक कि वो खुद ना चाहें, क्योंकि जब वो नहीं चाहते तो अल्लाह भी उनको हदायत नहीं देता, और जिसे अल्लाह हदायत से हटा दे तो तुम तो उसे सिराते मुस्तकीम का रास्ता जो है वो नहीं दिखा सकते। बड़ी खूबसूरत बात यहाँ पे कही गई है कि हदायत जो है ना किसी को दी नहीं जा सकती, जैसे दुनिया की जो दौलत, नेमतें और अनगिनत चीजें हैं जो दुनिया में आपको नजर आती हैं, आपके पास अगर है, आप अपने बच्चों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, मुख्तलिफ लोगों को जरूरत पेश आने पर आप वो चीजें जो है वो फराहम कर सकते हैं, आप दे सकते हैं, लेकिन जो लोग हदायत हासिल करना नहीं चाहते, जिनका दिल हदायत के लिए तैयार नहीं है, ऐसे लोगों को आप हदायत नहीं दे सकते, ऐसे लोगों को पैगंबर भी हदायत नहीं दे सकते। आपको पता है ना, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की जो बीवी थी, जो जौजा थी, वो जो है वो भी काफिर थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जो था वो काफिर था। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी जिंदगी ये ख्वाहिश करते रहे कि आपके चचा अबू तालिब जो है मुसलमान हो जाएं, लेकिन वो मुसलमान ना हुए। तो यहाँ पे यही बात जो है वो बताई जा रही है कि क्योंकि उन्होंने गुमराही इख्तियार की तो अल्लाह ने उनको जो है वो गुमराह कर दिया, उन्होंने निफाक इख्तियार किया तो अल्लाह ने पसंद ही ना किया कि वो मुसलमानों के दरमियान जो है वो रहें, तो फिर अल्लाह ने उनको राह रास्ते जो है वो हटा दिया। और जिसे अल्लाह हटा दे, मन अदल्लाह, उसको दुनिया की कोई ताकत जो है फिर सिराते मुस्तकीम की तरफ नहीं ला सकती। अब फरमाया जा रहा है कि वद्दू, ये जो मुनाफिक है ये क्या चाहते हैं, लो तक फुरून कमा कफारू, कि तुम भी जो है वो इसी तरह काफिर बन जाओ जैसे वो काफिर हुए हैं, तुम भी इसी तरह कुफर करो जैसे वो कुफर करते हैं। فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ। फिर फरमाया कि जब ये जो मुनाफिक हैं ये चाहते हैं कि तुम भी ऐसे कुफर करो जैसे वो कुफर करते हैं, فَتَكُونُونَ पस तुम हो जाओ, سَوَاءً सब बराबर, कि जिस तरह मुनाफिक हैं ऐसे तुम भी बन जाओ, यानी सब बराबर हो जाए, क्योंकि सोहबत के ना असरात होते हैं। तो ये मुनाफिक हैं, ये मुसलमानों के साथ इस्लाम के साथ मुखलिस नहीं हैं, तुम्हारे दरमियान जब रहते हैं तो ये नहीं है कि इस्लाम की या मुसलमानों की मदद करना चाहते हैं, बल्कि ये चाहते हैं कि किसी तरह तुम भी कुफर करने लग जाओ, तुम्हारे अंदर भी निफाक पैदा हो जाए और सब के सब जो है वो बराबर हो जाए। फतकूनुना सवाअन, उसमें ये होता है कि एक शख्स जब बुराई करता है और दूसरा जब अच्छा काम कर रहा होता है तो उसको रोकता है, उसको समझाता है, लेकिन अगर सब एक जैसे हो तो फिर कोई किसी पर उंगली जो है वो नहीं उठाता। और ये बड़ी खतरनाक बीमारी पाई जाती है कि फतकूनुना सवाअन, के सब बराबर हो जाएं। अब यहाँ पे मुसलमानों को जो है बड़ा अहम उसूल दिया जा रहा है, फला तत्तखिजू मिनहुम औलिया, लिहाजा इनमें से किसी को अपना दोस्त ना बनाना। आप इसको जो है वो सर्कल कर लें कि फिर दोस्त किसको बनाना है, जो अल्लाह से मुखलिस, जो दीन इस्लाम से, रसूल अल्लाह से, जो जो नेक है, मुत्तकी हैं, ईमान वाले हैं। तो कहा कि इन मुनाफिकीन को भी दोस्त ना बनाना, फला तत्तखिज़ू मिन्हुम औलिया, कब तक दोस्त नहीं बनाना, हत्ता, यहाँ पे हर से शर्त है, हत्ता युहाजिरू फी सबीलिल्लाह, यहां तक कि वो अल्लाह की राह में हिजरत ना करके आ जाए। तो जब तक वो अल्लाह के रास्ते में हिजरत ना कर ले, अगर वो हिजरत करके आ जाते हैं तो इसका ये मतलब है कि वो मफाद परस्त नहीं है, वो सच्चे हैं, तो उन्होंने इस्लाम की खातिर अपना घर छोड़ दिया, उन्होंने अपना वतन छोड़ दिया, जमीन छोड़ दी, कारोबार तिजारत छोड़ दी, तो फिर जो है वो तुम इनको दोस्त बना सकते हो। अब यहाँ पे ना मयार बता दिया गया, मयार क्या है कि ये ईमान तो लाए हैं लेकिन काफिरों के साथ ही रह रहे हैं, तो अगर ये हिजरत करके नहीं आते तो दोस्त ना बनाओ, और अगर ये हिजरत करके आ जाते हैं फिर दोस्त बनाओ, क्योंकि फिर ये हमदर्द हैं इस्लाम के भी, तुम्हारे भी, सच्चे हैं और ये कुर्बानी करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि आज फिर हमारे लिए अमल का क्या उसूल है। असल में अमल का यहाँ पे ये उसूल बताया जा रहा है कि इस्लाम कुर्बानी मांगता है, कभी हिजरत की, कभी जान, और जान जो है उसको कुर्बान करने की, कभी माल को कुर्बान करने की, कभी अपनी कुव्वतें, सलाहियतें, औकात जो है वो अल्लाह के रास्ते में दिए जाएं। तो असल चीज जो है वो क्या है कि जो अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी करते हैं, मेहनत करते हैं, मुशक्कत करते हैं, और मौके की मुनासिबत से ये जो कुर्बानियां हैं ये बदलती रहती हैं, कभी इस्लाम को किसी चीज की जरूरत होती है, कभी इस्लाम को जो है वो किसी चीज की जरूरत होती है। तो अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि उस जमाने में मदीना के अंदर मुनाफिकीन का ऐसा ग्रुप पाया जाता था, मदीना के अंदर भी और मदीना के इर्द गिर्द के कबाइल, बाज मुनाफिक थे, और यानी कबाइल में अच्छे लोग भी थे लेकिन कुछ मुनाफिक थे, मुसलमानों से खैरख्वाही और मोहब्बत का इजहार करते लेकिन ये कि इस्लाम के लिए कुर्बानी करने को तैयार नहीं थे, हिजरत पर कुदरत रखते थे क्योंकि मदीना इस्लामिक स्टेट मयसर आ चुकी थी, मुसलमान हिजरत करके वहां पे आ सकते थे ताकि दीन जो है उसके समरात को पा सके और सही तरीके से अल्लाह के दीन पर अमल कर सके, लेकिन वो फिर भी काफिरों के साथ मिलकर रहने को पसंद करते और आना नहीं चाहते थे। तो पहली बात ये कही कि इनको अपना दोस्त ना बनाना जब तक ये अल्लाह के रास्ते में हिजरत करके ना आ जाएं। और फिर दूसरी बात कही, फाइन तवल्लो, फिर अगर ये लोग जो है तवल्लो पलट जाएं, मुंह मोड़ लें, फखुजूहुम बस पकड़ लो इनको, अखज करना पकड़ लेना, तो अगर ये लोग जो हैं मुंह मोड़े यानी हिजरत ना करना चाहें, हिजरत से बाज रहें, फखुजूहुम तो इन्हें पकड़ो, वक्तुलूहुम और इन्हें कत्ल करो, हैसु वजदतुमूहुम जहां कहीं भी इन्हें तुम पाओ पकड़ो और इन्हें कत्ल करो। क्यों? ये मुनाफिक मुसलमान हैं और ये जो है काफिर कौम के साथ ताल्लुक रखते हैं, और काफिर कौम भी वो जो मुसलमानों के साथ जंग कर रही है, तो इस तरह ये काफिर कौम के साथ रहकर काफिर कौम की जो जंगी सरगर्मियां हैं मुसलमानों के खिलाफ उसमें ये हिस्सा लेते हैं। तो अब जब ये काफिर कौम के साथ हैं, अब मुसलमानों के सामने ये सवाल था कि काफिर तो जंग कर रहे हैं, ये मुसलमान उनके साथ है जंग, तो यानी ये उनके साथ रह रहे हैं ये कलमा गो, अब इन पर जो है वो हमला किया जाए कि नहीं, अगर ये जंग में हिस्सा ले रहे हों तो फिर इनको हम मार सकते हैं कि नहीं। यहाँ इसका जवाब दे दिया गया कि अगर ये सच्चे मुसलमान है तो इन्हें हिजरत करके आना चाहिए, और अगर ये हिजरत करने से रुक जाते हैं और ये काफिरों के साथ हैं और उनके साथ जंगी सरगर्मियों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो जहां पाओ इन्हें पकड़ो और इन्हें कत्ल कर दो, वला तत्तखिज़ू मिन्हुम वलिय्यन वला नसीरा, और इनमें से किसी को अपना दोस्त और मददगार ना बनाओ। तो यहाँ पर जो है ये पहला ग्रोह है मुनाफिकीन का, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि जो काफिर कौम के साथ रहते हैं और उनकी जंगी सरगर्मियों में शिरकत करते हैं, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो इन्हें दोस्त भी नहीं बनाना और जो है वो इनका कत्ल करना जो है ये जायज है। अब एक जो है वो दूसरा ग्रोह बताया जा रहा है, और ये आयत नंबर 90 में है। मुनाफिकीन का दूसरा ग्रोह ये वो है जो कि सुलह पसंद है, ये अमन पसंद मुनाफिक है। ये कैसे हैं? इल्लल्लज़ीना यसलूना इला कौमिन बैनकुम व बैनहुम मिसाक, अलबत्ता वो मुनाफिक इससे मुस्तस्ना है, यानी इनको ना कत्ल करना, इल्ला मगर वो लोग यसलूना जो कि मिले हुए हैं या जा मिले, वसला यसलू का मतलब होता है मिलना, तो वो लोग जो कि जा मिले हों इला कौमिन एक ऐसी कौम के साथ कि जिनके जिनके दरमियान और तुम्हारे दरमियान जो है ना वो सुलह का मुआहदा है, इला कौमिन बैनकुम व बैनहुम मिसाक, इसके मानी ये है कि जैसे जो कहा जा रहा है कि उनको दोस्त नहीं बनाया जा सकता, तो अब यहां पे कहा जा रहा है कि और साथ पीछे पड़ा अपने के दोस्त भी ना बनाएं और उनको मारें और कत्ल करें। अब यहां पे कहा जा रहा है कि अगर ऐसे लोग हैं जो कि क्या करते हैं कि वो किसी काफिर कौम की बाउंड्रीज में या हदूद में जा चले जाते हैं, हैं वो मुनाफिक, और वो जो काफिर कौम है उसका इस्लामी हुकूमत के साथ मुआहदा है, तो अब ये नहीं होगा कि चूंकि उस कौम से मुआहदा हो चुका है तो अब ये नहीं हो सकता कि मुसलमान जो हैं उन मुनाफिकीन जो है उनको पीछा करते हुए, उनको पकड़ने के लिए जो है उनका ताकुब करते हुए जो है वो उस काफिर कौम की बाउंड्रीज में दाखिल हो जाए, वहां मुसलमानों को नहीं जाना क्योंकि उस कौम के साथ जो है वो मुसलमानों का मुआहदा हो चुका है। तो अगर किसी कौम को जबान दी है, कोई मुआहदा है, तो मुसलमानों को उस मुआहदे का पास जो है वो करना होगा, तो उनको नहीं मारना, उनको नहीं कत्ल करना, ये एक शक्ल बताई गई। अब एक और शक्ल भी बताई जा रही है, वो कौन सी है? औजाउकुम हसिरत सुदूरहुम, या वो आ जाते हैं तुम्हारे पास हसिरत तंग है, हसीर होना ना हिसार, जैसे किसी का घेराव कर लिया जाए, और जब दिल में घेराव होता है दिल तंग होता है, हसिरत सुदूरहुम तंग है उनके सीने, उनके दिल तंग है, उनके दिल दिल बर्दा वो दिल बर्दाश्त है, क्यों? अयुकातिलुकुम कि वो तुमसे जंग करें, तो तुमसे नहीं लड़ना चाहते इससे वो तंग है, औ युकातिलु कौमहुम या वो अपनी कौम से जंग करें, वो इससे भी जो है वो तंग आ चुके हैं, वो दिल बर्दाश्ता है। अब यहां पर ये उन मुनाफिकीन का जिक्र किया जा रहा है जो कि सुलह जू हैं और किसी से जंग नहीं करना चाहते, ना वो तुमसे जंग करना चाहते हैं ना वो अपनी कौम से जंग करना चाहते हैं, ये नहीं कि तुम उनको जो है वो खाम खा छेड़ो। वलौ शा अल्लाहु लसल्लतहुम अलैकुम फला क़ातलूकुम, अल्लाह चाहता तो इनको तुम पर मुसल्लत कर देता। अब यहाँ पे लसल्लतहुम जो है ये अहम लफ्ज है और इसका रूट है सीन लाम तोए, इसके मानी है मुसल्लत करना, गलबा हासिल करना, किसी का जोर जो है वो पकड़ लेना। अब यहां पर जो है ये बात बताई जा रही है कि ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने ऐसे लोगों को तुमसे हटा दिया है कि ये जंग ही नहीं करना चाहते, मुसलमानों के खिलाफ लड़ने से इनके दिल में तंगी महसूस हो रही है। अब आप देख लें कि गजवाए बदर में मुशरिकीन के साथ हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु जो रसूल अल्लाह के चचा थे और बनी हाशिम के कई लोग तो आए थे, मगर लड़ाई के वक्त वो अलहदा रहे, उन्होंने जंग में नहीं हिस्सा लिया था, अपनी कौमियत की वजह से अपनी कौम के साथ आगे, लेकिन उस वक्त जंग में हिस्सा नहीं लिया। तो ये है इसका मतलब कि जो जंग नहीं करना चाहते ना आपसे ना अपनी कौम से, तो उनको उनको भी नहीं छेड़ना, उनसे भी जो है वो जंग नहीं करनी। और साथ ही कहा कि अगर अल्लाह चाहता तो इनको तुम पर मुसल्लत कर देता, लसल्लतहुम तो अल्लाह इनको तुम पर जो है मुसल्लत करता। लेकिन अल्लाह ने क्या किया कि अल्लाह ने जो है उनके दिलों में जो है वो जंग से दूरी पैदा कर दी। और अगर अल्लाह इनको मुसल्लत करता फलकातलूकुम तो वो तुमसे जरूर जंग करते, फैने तजालूकुम बस अगर वो तुमसे किनारा कश हो जाए। ए तजालूकुम जो है इसका रूट है ऐन ज़े लाम, इसके मानी है दूर रहना, बाज रहना, किनारा कश होना। तो अगर ये लोग जो हैं किनारा कश हो जाए, दूर हो जाए, फलम युकातिलुकुम तो तुम क्या करो कि फिर तुम जो है वो तुम भी उनके साथ जो है फिर जंग नहीं करो। कि अगर ये लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि ये अलग हो गए हैं तुमसे, फलम युकातिलुकुम बस नहीं वो लड़ते तुम्हारे साथ, वो अलग हो गए हैं, फलम युकातिलुकुम और वो तुमसे नहीं लड़ते, वह अलकौ इलैकुम अस्सलामा और वो डालते हैं तुम्हारी तरफ जो है वो सलामती। इसका मतलब है कि वो अमन का सलामती का हाथ तुम्हारी तरफ बढ़ाते हैं। फमा जअलल्लाहु लकुम अलैहिम सबीला, तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए इन पर जो है वो जंग करने की कोई सबील नहीं रखी। अब ये नहीं है कि अल्लाह ताला ने जो है वो तुम्हारे ऊपर ये जायज रखा हो कि तुम ऐसे लोगों से जो है वो जंग करो। तो आप देख लीजिए कि ये दूसरी किस्म के मुनाफिक हैं जो कि जंग नहीं करना चाहते। तो कहा कि जब ये जंग नहीं करना चाहते तो तुम भी इनसे जो है वो जंग मत करो। और ये जो कहा कि वो किसी ऐसी कौम के साथ जाके मिले जिनसे तुम्हारा मुआहदा है, तो यहाँ पे एहतराम मुनाफिक का के खून का नहीं है बल्कि मुआहदे का एहतराम है, एग्रीमेंट, मीसाक। तो ये है आयत नंबर 19 जो कि सुलह जो मुनाफिक हैं उनके बारे में अमल का ये उसूल देती है कि मुसलमानों को भी ऐसे लोगों से गैर जानिबदार रहना चाहिए, फिर उनसे जंग के लिए हाथ नहीं बटाना चाहिए, नहीं बढ़ाना चाहिए। अब आयत 91 सूरत अन्निसा की, इसमें जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक और किस्म के मुनाफिकीन जो है उसका जिक्र किया है। और ये कौन है? ये बदतरीन मुनाफिक हैं, बदतरीन धोखाबाज, चीटिंग करने वाले। सतजदूना आखरीना युरीदूना, ये तीसरी किस्म के जो मुनाफिक हैं ये भी अनकरीब तुम पाओगे। वजदा यजदू पाना, आखरीना कुछ और लोग, तो ये तीसरा ग्रुप है। युरीदूना ये चाहते हैं अय्या मनुकुम कि वो अमन में रहे तुमसे, हमजा मीम नून अमन में रहना, कि वो अमन में रहे तुमसे, वय्या मनु कौमहुम और अपनी कौम से भी अमन में रहे। वो चाहते हैं कि तुमसे भी अमन में पीस में रहे और अपनी कौम में से भी, लेकिन उनका हाल क्या है? कुल्लमा रुद्दू इलल फितनती, मगर जब कभी ये लुटाए जाते हैं फितने की तरफ, इनको फेरा जाता है फितने की तरफ, उर के सूफीहा तो इसमें औंधे मुंह गिर पड़ते हैं। अभी आपने जो है ये पीछे भी ये लफ्ज जो है वो पढ़ा है, और आप देखें ये आयत नंबर 88 में आपने पढ़ा अर कसा हूं, और यहां पे उर के सू वही सेम इसका रूट है, रा काफ सीन औंधा करना, किसी चीज को जो है वो इसकी साबका हालत पर लौटा देना। तो अब क्या है कि जब कभी इनको फितने का मौका मिलता है उर किसू फीहा, तो इसमें कूद पड़ेंगे। कैसे हैं ये कि फौरन जो है उसमें औंधे मुंह गिर पड़ते हैं, उल्टे हो जाते हैं। अब यहां पे ये बात बताई जा रही है कि फितने का, लड़ाई का, झगड़े का कोई मौका जो है ना, ये उसको छोड़ते नहीं है। वैसे कैसे है, अमन अमन का नाम लेते हैं, अमन पसंदी का ढंडोरा पीटते हैं कि भी हम तो अमन चाहते हैं, हम तो पीस चाहते हैं, लेकिन जब मौका मिलता है तो इस्लाम दुश्मनी में कोई कसर उठा नहीं रखते। अब यहाँ पे आगे अमन की तीन सूरतें बताई जा रही हैं। पहली शक्ल क्या है, फइल्लम यातज़िलूकुम, फरमाया के बस अगर ना वो किनारा कशी करे तुमसे, या तज़िलूकुम ऐन ज़े लाम, ये ऊपर भी आपने पढ़ा है, ए तज़िलूकुम, यहाँ पे या तज़िलूकुम इसका मतलब होता है अलग होना, दूर हटना। तो पहली शक्ल ये है कि अगर ये किनारा कशी नहीं इख्तियार करते तुमसे, यानी जंग को नहीं छोड़ते, तुमसे दूर नहीं होते, वयुल्कू इलैकुम अस्सलामा, और डालें तुम्हारी तरफ सुलह का हाथ। अब ये दूसरी बात बताई जा रही है, और सुलह परस्ती जो है या सुलह सलामती जो है वो तुम्हारी तरफ, तुम्हारे आगे पेश नहीं करते, मुकाबले से भी नहीं रुकते, यानी मुकाबला जो है वो करना चाहते हैं उससे बाज नहीं आते, और उसके साथ क्या है कि सुलह सलामती तुम्हारे आगे पेश नहीं करते। वयुल्कू यानी डालना, बढ़ाना, जैसे मोहब्बत की पींग बढ़ाना, अमन की पींग बढ़ाना, तो ये सलामती जो है उसका हाथ तुम्हारी तरफ नहीं बढ़ाते। तीसरी, वयकुफ्फु अयदियहुम, और ये रोक ले अपने हाथों को, और ये अपने हाथ ही नहीं रोकते, क्योंकि शुरू में लम आ गया ना, तो लम तीनों के साथ आएगा, तो पहली चीज लम किसके लिए है, मुकाबले से बाज नहीं आते, अलग नहीं होते, दूसरी चीज सुलह सलामती तुम्हारे आगे पेश नहीं करते, तीसरी चीज और अपने हाथों को जंग से नहीं रोकते। तो ऐसे जो बदतरीन धोखाबाज, चीटिंग करने वाले मुनाफिक, जिनके मुंह में तो पीस का नारा है, लेकिन जो है वो अंदर से क्या करना चाहते हैं कि जंग, लड़ाई, झगड़ा, हर मौके पर ये फितना खड़ा करते हैं। फाखुजूहुम, नंबर एक, इनको पकड़ो, वक्तुलूहुम, नंबर दो जो है वो इन्हें मारो, कत्ल करो, हैसू सकिफ्तुमूहुम, जहां कहीं इन्हें पाओ। अब यहां पे बताया जा रहा है कि जब ऐसे ये लोग हैं तो जहां मिले इन्हें पकड़ो, मारो, वा उलाइकुम जालना लकुम अलैहिम सुल्तानम मुबीना, इन पर हाथ उठाने के लिए हमने तुम्हें खुली हुज्जत दे रखी है। अब यहां पर इस बात का जो है वो ऐलान किया जा रहा है अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है ना ऐसे लोगों के लिए फिर खुली छुट्टी दे रखी है, और खुली छुट्टी का मतलब क्या है कि फिर इन्हें जो है वो पकड़ा जा सकता है, इन्हें जो है वो मारा जा सकता है। तो मेरी प्यारी बहनों, आयत नंबर 88 से लेकर आयत नंबर 91 तक हमने मुनाफिकीन जो है इनकी सिफात पढ़ी और इनकी मुख्तलिफ अकसाम पढ़ी, और आप देखें कि सबसे अहम बात जो सामने आ रही है वो ये कि मुनाफिक के कॉल और फेल में तजाद होता है। नंबर दो, मुनाफिक जो है वो उसके वो कहता कुछ है करता कुछ है, और नंबर तीन जो है वो मफाद परस्त होता है, नंबर चार वो कुर्बानी नहीं देना चाहता, और नंबर पांच वो बुजदिल होता है, डरपोक होता है, कि जहां फायदा नजर आता है वहां वो आगे कदम बढ़ाता है, जहां उसको मुश्किल नजर आती है वहां पे जो है वो मुड़ जाता है, पीछे हट जाता है। तो क्या करना है कि अपना जायजा लेना है कि मेरे अंदर ये मुनाफिकीन की कहीं अलामतें तो नहीं पाई जाती, क्योंकि मुनाफिक कुर्बानी नहीं करता, मुनाफिक कुर्बानी नहीं करता, मेहनत नहीं करना चाहता, सुस्त होता है, बुजदिल होता है, डरपोक होता है, झूठा होता है, वादे की खिलाफ वर्जी करता है। मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन ना सका। तो यहाँ पर जो बात वाजे तौर पर हमारे सामने आ रही है वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को निफाक पसंद नहीं है, क्योंकि मुनाफिक ऐसे ही हैं जैसे कि काफिर। तो काफिरों को पकड़ना, कत्ल करना, इसकी इजाजत दी गई। अब आप देख लें कि निफाक ऐसी जो शदीद और खौफनाक बीमारी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ये तुम्हें काफिर करना चाहते हैं और अल्लाह को भी ये लोग जो है ये पसंद नहीं है, तो क्या करो, इन्हें पकड़ो और इन्हें जो है वो मारो।